부르드려 감사합니다. कुछ अनुकाद अपनी खिदमत में भी अर्ज करते चले ताकि हमारी और आपकी कहना चाहिए कि आशनाई में इजाफा हो जाए। एक दफा दुरूद भेजिएगा मोहम्मद
ना हम बदलें ना आप कोई जवाब।
कम कहते हैं इतनी है यश। बदकिस्मती से हमने यूँ एहसास किया कि बहुत सारे लोग इल्मी अय्याशी में मुब्तला हो गए, ना उनकी जिंदगी में कोई पेशरफ्त ना सामीन की जिंदगी में कोई तरक्की, गरचे मामला मुसलसल हुए चले जा रहा है। तो हमने अपनी जिंदगी में यह तय किया कि हम जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं अपनी जिंदगी में भी तब्दीली चाहें और सामीन की जिंदगी में कुछ ना कुछ अहलेबैत किस्म ताकि कुछ ना कुछ तरक्की हासिल। हमारे सामने बहुत ऊंचे मीनार, हमारे सामने वो है कि जो सूलियों पर चल रहे हैं, हमारे सामने वो है अपनी जान के नजराने पेश किए। और हज़रत की समझ में आता है कि ये 10 अय्याम मुझे और आपको उनकी खाक से नजदीक कर रहे हैं। हम और आप में से मितमार की तरह सूली भी उतरना चाह रहे हैं, कम से कम सूली की खाक के नजदीक तो बढ़ कुछ अकीदत मवद्दत हमारे और आपके अमल के अंदर ऐसी बढ़े कि इंशाअल्लाह क़यामत के दिन और उस क़ुर्ब में इजाफा हो जाए जो मुझे और आपको अहले बैत से नसीब होना है। बस दूसरा नुकता हमारा ये है कि मैदान अमल अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र के साथ मेरे और आपके अमल के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती है कि हम और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम का क़ुर्ब हासिल कर सकें। इंशाअल्लाह इस मकसद को भी कुरान का मुझे आप हासिल करने की तौफीक दे। फखर दुरूद में है मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तीसरी बात जो इंतहाई अहम और मैं जनाब आलिम साहब के होते हुए बहरहाल इन्होंने इशारा फरमाया, हम लोग के यहाँ एक और दस्तूर है और हमने इसके ऊपर बहुत गौर किया है और वो ये होता है कि जहाँ कहीं ये साबित हो कि कोई जहन्नम में जाएगा उससे हम ज़्यादा खुश होते हैं इसके मुकाबले में कि साबित हो हम जन्नत में जाएंगे। यानी माजरत के साथ जुमला अर्ज करूँगा, हम दूसरों को अपने आप को जन्नत में ले जाके इतना खुश नहीं होते जितना दूसरों को जहन्नम में धकेलने में खुश होते। हमने सोचा कि हम ये काम क्यों करें, जिसने जन्नत में जाना है उसने जाना है और जिसके नसीब में जहन्नम लिखी हुई है उसे हम और आप मजीद धक्का नहीं दे पाएंगे, वो पहले ही गड्ढे में है उसे कहाँ जाएंगे। तो हमने तकरीर का रुख दूसरों पर नहीं रखा, दूसरों को सुनाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ सब का सब अपने लिए है आपको। अच्छा, अब ये जो तीन नुकात आपकी खिदमत में अर्ज हुए इनके नतीजे में कुछ चीज़ों से आपको महरूम रहना पड़ेगा, वो भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। तीन चीज़ें हमने जब इजाफा किए हैं तो कुछ चीज़ें कम भी होंगी। पहली बात तो ये कि हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम आम फहम और सलीस अंदाज में अहलेबैत की तालीमात में सुनकर पेश करेंगे। इसका मतलब है आपको गरज की चमकती खिताबत से महरूम होना पड़ेगा, वो एक खराबी जो आपकी समझ में पहले से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये होगा। जब हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि हम कहीं ना कहीं अमल में चाहेंगे कि जिंदगी बढ़े, इसका मतलब है हम हर रोज अमल के लिए कोई ना कोई काम कहेंगे ताकि हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ सके। और जब हम दूसरों को धकेलने पर इसरार नहीं करेंगे तो जाहिर है कि तीसरी बात सामने आएगी कि हम नुक्ते नहीं लगाएंगे, वो नुक्ते जिनमें इशारा होता है किसी और के जहन्नम में जाने का। हम सारी गुफ्तगू ये करेंगे कि आप और मैं अपने मुद्दे अहले बैत में इजाफा कैसे करें। इस पर आप सभी वो चीज़ें जो आपको तहम्मुल फरमानी होंगी ताकि इंशाअल्लाह ये काम अंजाम पा जाए। और अब इसके होते हुए मौजू आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूँ कि मौजू क्या है जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी है। मौजू का एक पस मंजर है और पस मंजर यह है कि कायनात की हर चीज अहले बैत के नुमाइंदे के महवर के ऊपर घूम रही है। जो कोई भी अहले बैत में से उस वक्त हो उसका वजूद महवर है। अमीर मोमिनीन ने नहज बलागा में इरशाद फरमाया, दुरूद भेजेगा मोहम्मद से जारी होते हैं, कोई तायर बुलंद परवाज मुझ तक पर भी नहीं मार सकता। یہ جملہ فرمایا اولاد ہیں، لیکن یہ ہر ایک اولاد علی کے لیے یہی ہے، اولاد علی میں سے ہر ایک ایسے ہیں، چاہے وہ پہلی ہجرا ہو، چاہے وہ 10 ہجرا ہو، اور چاہے وہ 1429 ہجرا ہو. جو کوئی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ينحدر عنه السيل ولا يرقى اليه الطير، ان سے وجود کے چشمے جاری ہوں گے. جب ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ ہمارے اور آپ کی مودت، محبت، عمل، زندگی اور موت کا دار و مدار اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ہونا چاہیے، تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ وقت کا اہل بیت کا نمائندہ پردہ جہاز میں. ہماری اور آپ کی ساری محبتیں ان کے وجود مقدس کے اوپر نثار ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کے تمام اعمال ان کی خدمت اطہر کے اندر پہنچنے چاہیے. بس ہم نے اس عشرے کے لیے جو موضوع انتخاب کیا وہ ہے عصر غیبت میں عزادار سید الشہداء کی ذمہ داری. سید الشہداء کا ایک عزادار اس غیبت کے زمانے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ مستقل رابطے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وجود مقدس سے، چاہے وہ ظاہر ہوں، چاہے وہ پردہ غیبت کے اندر، چاہے وہ بے ظاہر زندان سے باہر ہوں، چاہے وہ بے ظاہر زندان کے اندر، مستقل ایک رابطے کی ضرورت ہے. بس ایجان محترم، مجھے اور آپ کو رابطے کی ضرورت ہے امامت کے نمائندے سے، جس کو ہم حجت خدا کا کہتے ہیں. حجت خدا لفظ عمومی ہے جس کے اندر نبی بھی شامل ہے اور وقت امام بھی. حجت خدا سے رابطے کی ضرورت ہے. جب ہم عزاداری کے اندر مشغول ہیں، اس عزادار کا اس حجت خدا کے ساتھ رابطہ کیا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کردار کیا کردار ہونا چاہیے، اور ہماری تمام تر کوشش یہ ہوگی کہ ایجان محترم آپ صرف سننے میں اکتفا نہ کریں، ہمیں آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آنی چاہیے. تو یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں اگر 10 دن میں اور آپ اپنے کام کو پرخلوص انجام پا گئے، اگر یہ سعادت مجھے اور آپ کو ملی کہ ہم پرخلوص اس کام کو انجام دے سکے، تو یہ میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ کئی قدم آپ اہل بیت سے اور نزدیک ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ سب کی دیکھتے ہوئے کہ عزادار ایک ذمہ دار شخص ہے، عزادار صدیوں کی ایک رسالت کو انجام دینے والا ہے، عزادار خود ایک معجزہ ہے، شہادت تو ہے ہی معجزہ، عزادار خود ایک معجزہ ہے. آپ جتنا اس پوری تحریک کے اوپر غور کریں گے، عزاداری کے کردار کے اوپر، عزاداری کے طریقہ کار کے اوپر، 1400 سال کے اندر عزاداری کے مختلف انداز پر، تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ عزاداری ایک معجزے کا نام ہے. یہ مجھے ایک عجیب معجزہ ہے، آپ ذرا تصور فرمائیے گا، خود واقعی کربلا کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 72 ہے، اور یہ ایسا عجیب واقعہ ہے کہ اس کی یاد میں عزاداری منانے والے شہید ہونے والوں کی تعداد 72,000 سے کہیں زیادہ ہے. ایک عجیب بات ہے کہ عزادار مسلسل شہید ہے، اور بخدا میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس سرزمین کے اوپر، دولت ہے جو بغیر قربانیوں کی نہیں. کتنے ہی علماء، کتنے فقہا، کتنے ذاکرین، کتنے سامعین جنہوں نے پرخلوص جانے دیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں، تب کہیں جا کر میں اور آپ اس قابل ہو پائے کہ چار الفاظ بولیں اور کچھ لوگ سننے کے قابل ہو سکتے. تمام شہادتیں، یہ تمام قربانیاں میرے اور آپ کے کندھوں کے اوپر، جب تم اس کے بارے سے جنہوں نے قربانیاں دی اب تم ذمہ دار، اور اب آپ کو مجھے جواب دینا ہے خدا نے تعالیٰ کے حضور، خدا ہم نے اس ذمہ داری کو کیسے انجام. یہ ہرگز تصور نہ فرمائیے کہ یہ گھنٹے دو گھنٹے کا کام نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی اور موت کا کام ہے. इसी में मेरा रब की सब कुछ है। खुदा नमता जिन चीज़ों का हमसे हिसाब लेगा उनमें शायद अहमतरीन चीज़ों में से एक ही हज़रत अली कैसे मुनाकिद की। हज़रत अली तुम्हारा किरदार क्या था, हज़रत अली को किस तरीके से मनाया, और जब आप इन तमाम चीज़ों को जमा करें तो हर एक का मकसद होना चाहिए, हज़रत अली को किस समाप पर जाना चाह रहे हैं, क्यों अंजाम दे रहे हैं आप, इसके नतीजे में अपने अंदर क्या तब्दीली ईजाद करना चाह रहे हैं। मैं इसके ऊपर कोई बात भी गुफ्तगू करूँगा, लेकिन आज सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर वक्त पर इंतज़ाम देखते हुए, इस पूरी आज़ादारी के कई महबर, इस पूरे काम के कई मरकज हैं जिनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, इन तमाम का महबर एक इश्क है, इस पूरी आज़ादारी का महबर एक इश्क है, इस पूरी आज़ादारी का महबर एक जज्बा है, और वो जज्बा है एक अजीम शान हस्ती के हुजूर अकीदत का पैगाम पहुंचा, किसके हुजूर अकीदत का पैगाम, उसके हुजूर जिसके एहतराम में रसूल खुदा खड़े हो जाते। ये काम मामूली काम नहीं है, ये काम मामूली काम नहीं है, उस हस्ती के हुजूर जिसके एहतराम में रसूल खुदा सर पा खड़े हो जाते हैं, आपने मैंने अपनी अकीदत के जज्बात को साबित करना। 10 दिन मेहनत करेंगे, 2 महीने 8 दिन मेहनत करेंगे, पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे बीवी के हुजूर साबित करने के लिए कि बीवी आपके फर्जंद के मानने वाले साबित करें। ये अज़दारी का महबर है, ये अज़दारी का मरकज है। अगर ये साबित हो गया कि बीवी आपके मानने वाले आपके फर्जंद के चाहने वाले, बस यही हमारा काम, इस बात को साबित कर लीजिए किसी तरीके से, इतना पुरखलूस अंजाम दीजिए, इतना खुलूस के साथ अंजाम दीजिए कि उनकी दुआओं में मेरा और आपका नाम है, इतना पुरखलूस है। जो लोग उस जमाने में मदीने में थे जब बीवी तशरीफ फरमा थी, तो अच्छा काम अंजाम देते थे, अहले बैत की नुसरत करते थे, और ये आरजू करते थे कि बीवी की दुआओं के अंदर किसी तरीके से हमारा नाम आ। हम कहेंगे बीवी हम तो उस दौर में नहीं, लेकिन 1400 साल के इस फासले के बावजूद हमारी जान कुर्बान आपके खाके पास, हमारा इज्तिमा आपके लिए, हमारा जमा होना आपकी खिदमत में अपने दिली जज्बात को पहुंचाने के, हम यहाँ सिर्फ इसी काम के लिए जमा हुए हैं कि आपके हुजूर कहें कि आपके और आपके फर्जंद के चाहने वाले हैं, हमारे दिल आपके साथ है, और ये हस्ती अजीम शान हस्ती है। कभी हम गदीर खुम के ऊपर बात करते हैं तो सोचते हैं कि गदीर खुम, गदीर का हक कितना अजीब गरीब हक है कि रसूल खुदा ने इतनी मेहनत की, सब लोगों को जमा किया, लोगों के सामने गदीर का ऐलान किया, सोचते हैं इतना अजीब हक है कि इसकी पहली कुर्बानी बीवी की जात मुकद्दस है, ये गदीर का हक अजीब हक है, इसकी पहली कुर्बानी बीवी की जात मुकद्दस है, मुहर्रम शुरू हो चुका और हम और आपके दिल रवाना है मदीना की गली में, यहाँ सैयद शहादा ने मदीना छोड़ने का ऐलान कर दिया। सब लोग वाकिफ हैं कि हुसैन का मदीने से जाना मदीने को सुना करते थे, फिर मदीने में खाक बन सके, सब लोग इस बात से वाकिफ हैं, सब लोग जमा हुए ये देखने के लिए कि सैयद शहादा मदीने से कैसे रोक सकते हो, बयान किए सैयद शहादा मदीने से कैसे गए, एक एक रिवायत बयान हो रही है मुख्तलिफ रावियों के हवाले से, मुख्तलिफ रावियों के अंदाज में कहते हैं सैयद शहादा अपने नाना के रोजे मुकद्दस के सामने खड़े हो गए, सैयद शहादा मुतमईन अंदाज में पल पढ़ाते हुए अपने नाना की तरफ गए, नाना के रोजे पर पहुंचे अलविदा, उसके बाद अपने भाई के रोजे मुकद्दस के सामने आए, मुतमईन अंदाज में बढ़ते हुए गए, अपने भाई के रोजे के ऊपर पहुंचे अलविदा कर दिया। फिर कुछ रावी इस तरह से बयान करते हैं कि जब वो बीबी के कब्र मुकद्दस के सामने आए तो ऐसे लपकते हुए गए जैसे कोई बच्चा बाकी गोद में लपक जाता, उसे बीबी को अलविदा करने आए। कायनात में ये मंजर अजीब मंजर है,
मैं तुम्हें बस ये अर्ज करूंगा कि ये हुसैन पहली दफा अलविदा कहने न जाए हैं। एक और मौका था, बीवी का जसद घर तैयार हो गया था। मौला अमीर उल-मोमिनीन ने कहा था, हसन हुसैन अलविदा के लिए आ जाओ, और सैयदुल शहादा पहुंचे थे। उस मौके पर मौला हसन ने अलविदा किया था, मौला हुसैन खड़े हो गए, कहा मैं अपनी माँ को अलविदा नहीं करूंगा, पहले मेरी माँ मुझे अलविदा करे। बीबी उम्मे सलमा तशरीफ लाई, कहा बेटा हुसैन आपकी बादरे करा भी रुखसत हो गई। कहा मैं हुसैन हूँ, अपनी माँ को पहचानता हूँ, पहले मेरी माँ मुझे अलविदा करे। बस वो वक्त आया, पत्ते कमर टूटे, दस्ते सैयद आने हुसैन को अपने से नजदीक किया, हुसैन ने अपनी मां को अलविदा कर लिया मदीने में। लेकिन क्या हुसैन तनहा बढ़ गए हैं? हुसैन का मामला मक्का पहुंचा, करबला पहुंचा, सब कुछ होता रहा, क्या मां कहीं और चली गई है? एक शबे आशूर है, मौला मैदान करबला में शाम की तारीखियों में एक शख्स नजदीक आया, मौला से कहता है, मौला ये अजीब मैदान है, यहाँ तारीख है, लेकिन किसी बीवी के रोने की आवाज, किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। फरमाया तू नहीं जानता, अरे ये मेरी माँ की आवाज है।
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا